तुम आत्मा जानती हो कि हम आत्मा बिंदी हैं और उस बिंदी में पार्ट बजाने की नूद है। ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है, उस ड्रामा का विनाश नहीं होना है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वो ही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठा होगा वो ही समझेंगे कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकम विनाश होंगे। माम एकम याद न किया, दूसरों को भी बीच बीच में याद किया तो अग्नि तेज नहीं होगी। तीव्र अग्नि न होने के कारण तुम्हारे पाप भस्म नहीं हो सकते। जब तुम्हारे पाप भस्म होंगे तो सबको पैगाम मिलेगा। बाप वह मंत्र देते हैं सबके लिए, माँ में कम याद करो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अभी तो आसुरी गुण भरे पड़े हैं, उन अवगुणों को छोड़ना है। पहले देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है, ऐसे ऐसे काम करते हैं जैसे जंगली जानवर। उन विचारों को क्या मिलेगा? जंगली जानवरों के मिसल चलेंगे, एक दो से प्यार से चलते नहीं है। तुमको तो बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना है। कोई तो दिवाला मार देते हैं तो समझते हैं अब बाबा ही हमारी सहायता करे। खुद की हिम्मत टूट जाती है। अरे बाबा एक एक की बैठ सहायता करेगा? कर्म भोग तो तुम्हारा अपना है, वो तो तुमको ही सहन करना पड़ेगा। बाबा इसमें क्या करेंगे? बाप तो आए हैं सभी आत्माओं को ले जाने के लिए, ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी सहायता कर देंगे तुमको ही ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधेरे में है, भक्ति मार्ग में तो जरूर भक्तों का ही मान होता है। शंकराचार्य आदि सब भक्त हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भक्त। उनका भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं, बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, तो उनका नाम कितना है। श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य हिज होलीनेस कहते हैं। अब वास्तव में हिज होलीनेस इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि सबका जन्म तो विकार से होता है। विकृत कर्म से जन्म होने वाले का टाइटल रख देना हिज होलीनेस, ये तो ठीक नहीं है। कोई कोई अपन को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। वो समझ लेते हैं कि जो बहुत पाप करते हैं वो पतित हैं। अरे काम कटारी चलाना ही तो सबसे बड़ा पाप है, जो मनुष्य को आदि मध्यंत दुख देता है। और गीता देखो कितने मनुष्य बैठ पड़ते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी गीता पढ़ता था। आप समझते हैं कि शास्त्र हैं, इनसे कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि रिलीजियस नावल्स हैं और वो शैतानी नावल्स भी होते हैं। इन रिलीजियस नावल्स का मान बहुत होता है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। अभी तो भक्ति मार्ग का बहुत मान है, ज्ञान का तो किसी को पता नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है, मना? जब तक देवताई गुण नहीं आए हैं, जब तक देवता नहीं बने हैं, तब तक महिमा नहीं होनी है, ग्लानी हो सकती है। ग्लानी होती है, और जब हम देवात्मा बन जाते हैं तो महिमा शुरू होती है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप आदि कोई मंदिर ठिकाने आदि में न जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह तो जरूर होते हैं। अब देखो, ये हे भगवान कहते हैं, हे भगवान कहना, ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। अभी तुम बच्चे से जानते हो, हम बेहद के बाप के पक्के बच्चे बने हैं। ये है बाप दादा, इसलिए ये त्रिमूर्ति चित्र बड़ा अच्छा है। बल कहते भी है, ये दादा को क्यों रखा हुआ है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए, और ये तो पतित है, यार में देखते हो नीचे तपस्या में बैठे हैं, योग लगाते लगाते फिर ऊपर सूक्ष्म बतन में चले जाएंगे। राजयोग से पतित से पावन बन जाएंगे। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, नंबर बार बच्चे हैं, सब बच्चे बैठे हुए हैं, परंतु ये तो बदलते रहते हैं। ये सदैव कायम पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं है, इसमें बहुत मीठा बनना होता है, और चलन भी बड़ी रायल्टी की चाहिए, बात कम करें। पहले पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, जास्ती टिक टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। देखो तुमने भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, बहुत रड़ी मारी है और कितने धक्के खाए हैं, अभी तो तुमको बिल्कुल सिंपल बन जाना है। सिंपल बन करके समझाते रहते हो, सिर्फ बाप को याद करो, योग बल से तुम विश्व का मालिक बन सकते हो। आगे चल करके इस बात का पता पड़ेगा कि नंबर बार कौन कौन क्या क्या बनते हैं, प्रजा का तो कोई हिसाब नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रजा तो बहुत होती है, ढेर की ढेर, वो तो लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, ब्रह्मा की औलाद न बनेंगे, ब्रह्मा को फॉलो न करेंगे, ब्रह्मा के आचरण को धारण नहीं करेंगे, तो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वंश में जा सकते हैं, कन्वर्टेड ब्राह्मण बन सकते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। आगे चल करके देखना, बहुत याद करने लग पड़ेंगे। कब? जब मौत सामने आवेगा, मौत का बाजार लगेगा तो बहुत बैराग आवेगा। अभी भी कहीं कहीं थोड़ा कुछ हो जाता है तो बहुत याद करने लग पड़ते हैं। अभी तो ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, सब आत्मा हिसाब किताब चुक चुक करके जावेंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है, 500 करोड़ शरीर खत्म हो जावेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, ये सब ड्रामा में नूद है, नई बात नहीं है। दुकाल के कारण कितने मनुष्य भूख मरते हैं, बाप जानते मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो क्या बाप मदद नहीं करेंगे? कोई आवेंगे फंड लेने के लिए कि अकाल के लिए फंड दे, वो कहेंगे ले जाओ, उसमें भी ठगी तो करते ही हैं। क्या ठगी करते हैं? मित्र संबंधी नजदीकी वालों को अच्छी चीज दे देंगे। तो देखो दुनिया में झूठ है, मेरा ही झूठ लगा पड़ा है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो प्रजा प्रजा के ऊपर बंदूक चलाती रहती है। देखना दिन प्रतिदिन और ही जास्ती तब वो प्रधान होते जाएंगे। भूख हड़ताल करना, स्ट्राइक करना, ये सब बातें पहले नहीं थी। अंग्रेजों के राज्य में ही कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं थी, वो फिर भी रजो प्रधान थे। इन कौरव गवर्नमेंट की भेंट में तो उनको रजोगुणी कहेंगे, ये तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। फिर ठगी झूठ आदि सब तरफ है, आपस में मिले हुए रहते हैं। बाप कहते हैं ये आपस में लड़ेंगे, ये हमेशा मिलकर के रह नहीं सकेंगे, आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुमको मिल जाएगा। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार कराते थे, मुख में चंद्रमा के साक्षात्कार की वास्तव में बात नहीं है, ये तो सारे विश्व का गोला तुम्हारे मुख में आ जाता है। तुम प्रिंसिपल से बनते हो, सारी शक्ति जैसे मुट्ठी में है, मुख में भी है और मुठ में भी है। अभी स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में आने वाला है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, योग से तुम पवित्र बनकर के पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। योग से हेल्थ भी बनती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। चक्रवर्ती राजा बनते हो परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है, जो पढ़ाई भली भांति पढ़े बल बदली हो जाती है। कहाँ भी रहते हो पढ़ो, खान पान आदि सब शुद्ध रखो और सभी से तोड़ भी निभानी है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, बहुत मुश्किल छोड़ते हैं, बड़ा गंद करते हैं, सेंटर को संभालते हैं, फिर गंदे में हो पड़ते हैं। अगर उनसे कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, फिर मुसीबत अबलाव पी को ऊपर आ जाती है। कितने विघन डालते हैं ये आर्य समाज, आज तो बहुत विघन डालेंगे। आर्य समाजी तो अभी के निकले हुए हैं ना, पिछाड़ी की टाली है तो बहुत तमो प्रधान है। इन्होंने तो दो तीन जन्म भी मुश्किल से लिए होंगे, तो देखो कितने विघ्न डालते हैं। कहाँ वो विश्व के मालिक और कहाँ ये मच्छरों के सदस्य अभी निकले हुए, ये देवताओं को तो मानने वाले हैं नहीं। बस जिसने जो मत चलाई चल पड़े। अभी कहते हैं आदिदेव महावीर, फिर महावीर बंदर को कह देते हैं। अरे ये तो आदिदेव है ना, उनको कोई महावीर या हनुमान थोड़े ही कहेंगे। महावीर तो हनुमान का नाम है, महावीरता दिखाई है तो उनका नाम महावीर रख दिया है। अभी तुम इन बातों के अर्थ को समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो, रावण पर जीत पाते हो, तो ये सारी योग बल की बातें हैं। तो कोई याद में बैठे हो, बाप की याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करते करते शांति और सुख में चले जाएंगे। तो ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है। इस स्थापना के कारोबार को कोई जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबर बार हैं, कोई अंदर शैतानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा ही शैतान बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अभी बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रहे और निंदा कराई तो ठौर नहीं पाएंगे। निंदा क्यों कराते हैं? क्योंकि मेरे सन्मुख रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचानते। न पहचानने के कारण फिर निंदा कराते हैं। कहते भी हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जब विनाश का टाइम आवेगा तो विनाशी धर्मगंडों में जाकर के उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। तो चोरी करना, पाप करना, ये सब निंदा हुई ना। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पावेंगे, नापास हो जाएंगे। और टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास भी दानर होंगे। वो हद की बातें होती हैं। यहाँ तो बेहद की बातें हैं। भगवान कौन है दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य हो और बाप को न जाने तो उसको जानवर कहेंगे, क्योंकि मनुष्य तो बनता ही है इसे एक जन्म में। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। और मनु अर्थात ब्रह्मा, वो तो इस लास्ट जन्म में ही होता है। तो तुम हो सच्चे सच्चे मनुष्य। मनुष्य का काम है मन को उपयोग में लाए, मनन चिंतन करे। मनन चिंतन भी हद की बातों का नहीं। ईश्वर जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की बातों का मनन चिंतन चले। तो जानवर जैसे मनुष्यों में बहुत है। बंदर बनते बनते तमो प्रधान बन गए हैं। माया भी पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो बनती है, फिर रजो बनती है, फिर लास्ट में तमो को हो जाती है। अभी माया भी तमो प्रधान है, सब तमो प्रधान बुद्धि है। दिल्ली में देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में भी बुद्धि नहीं है कि किसको आग लगाए रहे हैं। ये भी ड्रामा में नहीं है, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार ही होता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगली वाणी है 10/11/66 की। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं रचयिता को भी याद करते हैं, और रचना के आदि मध्य अंत अथवा सुदर्शन चक्र को भी याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि सुदर्शन चक्रधारी बनो। जो नॉलेज दी है उसका प्रूफ निकालो। अगर मनन चिंतन मंथन चलता है, आत्मा 84 के चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाती है और हमारी आत्मा ने क्या पार्ट बजाया है, ये बातें बुद्धि में चलती है तो समझो ईश्वरीय नॉलेज को हमने धारण किया। ये तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है, ये ब्राह्मणों का उद्देश्य होता है, देवताओं का उद्देश्य नहीं होता। क्या मनन चिंतन मंथन करें और अपने 84 जन्मों का हिसाब किताब निकालें? तुम ब्राह्मणों का उद्देश्य है सुदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 के चक्कर को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब किचरा बुद्धि से निकाल देना चाहिए। भक्ति मार्ग का और सब मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति का कीचड़ है। धामानुसार सारा भारत कीचड़ा बन गया। भक्ति दुर्गति मार्ग का कीचड़ा पकड़ने से सत्य को बिल्कुल भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, हमको बनाया था, उनको नहीं बनाया था, इनको। जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको नहीं बनाया था, भला भी ब्राह्मण बने हैं लेकिन कच्चे ब्राह्मण हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, अधूरी नॉलेज लेते हैं तो अधूरे ब्राह्मण बनते हैं और द्वापर युग से कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं। अभी भी धोखा देते हैं, वहां भी धोखा देते हैं, यहाँ धोखा देने की शूटिंग करते हैं तो वहां भी ब्रॉड ड्रामे में छोड़ेंगे थोड़ी। जैसा शूटिंग में होता है वैसा ब्रॉड ड्रामे में पार्ट चलता है। तुमने तो पूरे 84 जन्म लिए, माना जो ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं वो कम जन्म लेने वाले ब्राह्मण हैं, और जो पूरा ज्ञान उठाते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी की लिस्ट में आते हैं, वो 84 जन्म भी लेते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी नहीं होते। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में फर्क किस बात का हुआ? सूर्यवंशी दूसरे दूसरे धर्मों में जाकर के जन्म ले सकते हैं, लेकिन जहां भी जाकर के जन्म लेंगे वहां कन्वर्ट नहीं होंगे। और चंद्रवंशी, चंद्रवंशी कन्वर्ट भी नहीं होंगे, अगला जन्म लेकर के भी कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और चंद्रमा की सारी जनरेशन शीतल स्वभाव वाली है। तो उठते बैठते चलते आत्मा को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। बाप है ज्ञान सूर्य और सब उसके बाल बच्चे हैं। तुम ब्राह्मणों के सिवाय सब शूद्र हैं। तुम अभी पैरों से निकल करके चोटी पर आ गए हो। बायजोली खेलते हैं तो चोटी और पैर दोनों को मिलाई देते हैं। तो ये संगम युग का समय है। विराट रूप का जो चित्र बनाते हैं वो रंग है, उसमें जो मुख्य ब्राह्मण है उनको दिखाया नहीं गया है, शिव बाबा को भी उड़ाई दिया है, ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया, बाप ने समझाया तुम कैसे 84 का चक्कर लगाते हो, कैसे ये बायजोली खेलते हो, पहले पहले हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा शिव बाबा के द्वारा कार्य करता है। रचता और रचना के ज्ञान से ही तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी चाहिए। सुबह हो उठ करके बैठो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। हमने अपने 84 के चक्कर को जान लिया, हम जानते हैं हम आत्माओं का रचयिता बाप एक है, कहते भी हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप तो निराकार परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहवासी थे और वो हमारा बाबा भी है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, शिव बाबा के मंदिर में जाए कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते मैंने ही तुमको मनुष्य से देवता तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था। तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि है ऊंचे से ऊंचे। पुरुषोत्तम बुद्धि उनको कहा जाता है। सब स्त्री पुरुष में स्त्री पुरुष को नमन पूजन करते हैं। पहले तुम ये नहीं समझते थे कि ये कौन है, कहाँ से आए, कब आए, क्या करके किया। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने समझाया ये भारत है अविनाशी खंड। क्या समझाया, अविनाशी खंड क्यों है और खंड क्यों समुद्र में डूब जाते हैं। जैसे अमेरिका 500 साल पहले पता ही नहीं था मनुष्यों को कि अमेरिका नाम का भी कोई महाखंड होता है, महाद्वीप होता है इस पृथ्वी पर। ऑस्ट्रेलिया का 300 साल पहले पता ही नहीं था। भारत को अविनाशी कहते हैं, तो ये दूसरे दूसरे खंड विनाशी क्यों हो जाते हैं, क्यों समुद्र के गर्त में समाये जाते। क्योंकि एक भारत ही भगवान की जन्मभूमि है और धर्म खंडों में भगवान आकर के जन्म नहीं लेता। इस भारत में ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। वो है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। दुनिया में किसी को पता नहीं है, इतना नशा कोई को नहीं है जितना तुम भारतवासी बच्चों को है। परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता, जिसकी यह जन्मभूमि भारत है। पतित पावन बाप की जयंती भारत में हुई है और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। ये भी समझते नहीं है कि भारत में ही शिव जयंती क्यों मनाई जाती है। जरूर यहाँ शिव बाबा ने जन्म लिया होगा ना, कोई बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ये तो उनका अलौकिक जन्म है। अलौकिक जन्म माना जैसे लौकिक में बच्चा पैदा होता है, पहले गुप्त रहता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। जो नजदीकी है वो पहले पहचानते हैं, बाहर वाले और दूर के लोग बाद में पहचानते हैं। ऐसे ही वो निराकार शिव ज्योति बिंदु इस भारत भूमि में आता है, पहले गुप्त पाठ बजाता है। जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त पलता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो ये संगम युग है 100 साल का। इस 100 साल के संगम युग में पहले ब्राह्मण बच्चों के बीच में बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि शिव बाबा आया हुए हैं, प्रैक्टिकल में आया हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते। ब्राह्मणों में भी जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो नहीं पहचानते, जो पक्के ब्राह्मण हैं वो नंबरवार पहचानते हैं। जरूर शिव बाबा यहाँ आया हुआ है। ये भारत तो बहुत बड़ा तीर्थ होना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार किसी को ये पता नहीं है कि हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है। तो ये हो गया मुख्य तीर्थ। इस भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। इस भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम अर्थात माताओं की वंदना यहाँ की होती है। कब होती है? जब माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। आसुरी माताएं नरक का गेट खोल करके बैठ जाती है। उनकी महिमा नहीं है। वंदे मातरम, भगवान बाप आकर के माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते। पुरुषों में वो ताकत नहीं आती जो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बने या सहयोगी बने। उसमें विघ्न डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं, पुरुष चोले में हैं, वो ऑटोमेटिक दुर्योधन दुशासन व्यक्ति को पकड़ लेने वाले हैं। इसलिए पुरुषों को निमित्त नहीं बनाया है, ज्ञान कलश धारण करने के लिए भी निमित्त नहीं बनाया है। और ज्ञान कलश में जो ज्ञान अमृत भरा हुआ है वह बांटने के लिए भी निमित्त नहीं बनाया। धारणा करने के लिए जगदम्बा धारण करती है और बांटने के निमित्त बनती है लक्ष्मी। शास्त्रों में भी ये बात आई है, बल सागर मंथन हुआ, देवताओं ने भी मंथन किया, असुरों ने भी मंथन किया, लेकिन ज्ञान कलश में से ज्ञान बांटने का कार्य लक्ष्मी को दिया जाता है। तो वंदे मातरम कहा जाता है। इस भारत भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनकी वंदना की जाती है। तुमको ये नशा रहना चाहिए। भगवान की श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जो जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। जितना और उतना का सवाल है। श्रीमत पर और भ्रष्ट मत पर चलते तो है ना। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा बाप को पहचानते हैं तो मत पर चलते हैं। मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते तो दूसरों की मत पकड़ लेते हैं। जिसने जो समझाया उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित हो जाते माना जन्म जन्मांतर उनकी प्रजा बनती रहती। तुमको तो नशा होना चाहिए कि हम ऊंच पद पावेंगे श्रीमत पर चलने के आधार पर। प्राचीन भारत स्वर्ग था, भारतवासियों ने लाखों वर्ष कल्प की आय लगा दी है। अब तुम समझते हो बाबा जिसका यह भारत जन्म स्थान है उसने आकर के जो धर्म स्थापन किया है उसकी मुख्य है गीता। ये गीता किसने गाई ये भी भारतवासी भूल गए हैं। कितना फर्क पड़ जाता है। कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ निराकार शिव। श्री कृष्ण है साकारी, बाप है निराकारी। तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वो बहुत जन्मों के बाद अंत में तमो प्रधान बन गई है। फिर मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इनको सो श्री कृष्ण गोरा बनाए रहा हूँ। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। श्याम पाटधारी है तो श्याम है, काला मुंह वाला है। गोरा पाटधारी है तो गोरा है, सुंदर है। एक ही व्यक्ति के ऊपर दो नाम रख दिए ऐसे नहीं कि संगम युग में काला है और सत्युग में गोरा होगा। सत्युग में तो शरीर ही बदल जाएगा, संगम युग में ही कोई शरीरधारी का ऐसा गायन है, ऐसे मुकर्रर रथ का गायन है जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं तामसीतन में, तो कलंक लगते हैं। कलंक नारायण बनता है तो नारायण की महिमा ही महिमा होती है, कोई कलंक नहीं लगाए जाते। शास्त्रों में भी नारायण के ऊपर कोई कलंक नहीं है, एक नारायण के सिवाय और सब देवताओं के ऊपर कलंक लगाए हुए हैं, क्योंकि नारायण है 16 कलर संपूर्ण। तो देखो कितना फर्क पड़ गया है। ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस सुंदर था, उनकी महिमा बहुत भारी है। कौन से कृष्ण की महिमा भारी है? सतयुग में जो पैदा होगा बच्चे के रूप में उसकी महिमा भारी है, या संगम युग में जो कृष्ण प्रत्यक्ष होता है किसी चोले के द्वारा उसकी महिमा भारी है? जरूर संगम युग में कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की सोल किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रत्यक्ष होती है, और प्रत्यक्ष होती है तो उसकी महिमा होती है, क्योंकि बाप बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। बाप सेवा कभी भी अपनी प्रत्यक्षता स्वतः नहीं कर सकता, ये गायन है फादर सोज सन्स, सन्स सोज फादर। मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, ये उनकी महिमा है ना। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, इनका क्या ताल्लुक है। समझते हैं बैकुंठ के मालिक थे, बैकुंठ व स्वर्ग कोई द्वापर में थोड़े ही होते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग के साथ साथ जो तुम पढ़ते आए हो उन शास्त्रों में कोई सार नहीं है, जिसमें सार ही नहीं है उस निसार चीज का हमको अवलोकन नहीं करना चाहिए। जो सार की बातें हैं वो बाप आकर के बताते हैं, बाप बताते हैं शास्त्रों में भूसा भरा पड़ा है, उसमें जो सार की बातें हैं वो ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ। जिन बातों को मैं सुनाता हूँ, शास्त्रों के सार की बातें बताता हूँ भक्ति मार्ग की, उनमें जरूर गुही अर्थ है। इसके अलावा दूसरी दूसरी बातों को मनन चिंतन करने से, मंथन करने से कोई फायदा नहीं। बल मुरली में बोला है कि भागवत में, रामायण में, महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे तुम इस समय ज्ञान से टैली कर सकते हो, लेकिन टैली करने के बावजूद भी वेरिफिकेशन लेना जरूरी होता है। क्योंकि भक्ति माना दुर्गति होती है, बुद्धि दुर्गति को पाई हुई होती है तो क्लैरिफिकेशन सही नहीं निकल सकता। दुर्गति पूरी हो, दुनिया कांत हो, तो मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, आकर के सत्व प्रधान बनो। अभी तुम बच्चे तो सन्मुख बैठे हो, सन्मुख बैठे हो को क्या मतलब हुआ? एक स्थूल मुख के सामने बैठना होता है और एक बुद्धि से विमुख होना नहीं होता, बुद्धि से प्रीति बुद्धि होते हैं, वो है सन्मुख। बुद्धि से सामने है सन्मुख और विपरीत बुद्धि है उन्हें सन्मुख नहीं कहेंगे। जानते हो बाबा 5-4 वर्ष के बाद हमको फिर से राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में निश्चय बैठा होगा। सारी दुनिया कहती है गीता कृष्ण ने गाई, बाप कहते हैं उनमें शशि के आदि मध्यंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। अभी फिर से कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तुम भी मर्जीवा बने हो ना, तुम्हारे सबके भी नाम रखे थे, अब नहीं रखते हैं, क्योंकि जिनों जिनों के नाम रखे उनमें से बहुतों ने फारकती दे दी। बाप का बन करके नाम रखा है फिर भाग गए। ये तो शोभा नहीं देता है, इसलिए नाम देना ही बंद कर दिया। अभी तो नाम देने की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में नाम धरे जाते हैं, वो तो ऐसे ही नाम रख देते हैं, कोई काम की बात नहीं होती। शास्त्रों में वास्तव में जो भी नाम है वो काम के आधार पर रखे गए हैं। जैसे जैसे जिसने काम किए वैसे वैसे उसके नाम रखे गए, वैसा ही उनका रूप दिखाया गया है। कोई का राक्षस रूप दिखाया जाता है तो राक्षसी नाम रखा जाता है। सीरत के आधार पर सूरत दिखाई गई है। अभी चेहरे फिर से तैयार हो रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं और दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं वो अभी भी देवताई चेहरा प्राप्त करेंगे, उनका देवताई चेहरा प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रैक्टिकल में भी फरिश्ता स्वरूप नजर आवेंगे और जो श्रीमत पर न चल करके मनमत पर चलते हैं या कोई मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं और यज्ञ का नुकसान करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनका राक्षसी चेहरा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे हो और शिव बाबा के पुत्र हो। बाप कहते हैं वर्षा तुमको मुझसे लेना है, ब्रह्मा है बाप, शिव बाबा है बाबा ग्रैंडफादर, और वर्षा किसे लेना है? है ग्रैंडफादर पहले होता है या बाप पहले होता है? है ग्रैंडफादर पहले होता है, बाबा पहले होता है, बाप बाद में होता है। फिर यहाँ बोला वर्षा तुमको मुझसे लेना है, लेना है माना भविष्य की बात बताई कि भविष्य में ग्रैंडफादर से वर्षा मिलेगा। अरे ग्रैंडफादर तो यज्ञ के आदि में था, जिसने ब्रह्मा को भी ज्ञान का जन्म दिया, वो ग्रैंडफादर तो चला गया, अब वर्षा कैसे लेना है? जरूर जो चला गया वो फिर से बाप के रूप में आता है, पहले भी बाप के रूप में था, काम के आधार पर बाप था, ज्ञान का बीजारोपण किया तो बाप बना, और बाप का काम फिर अंत में भी है बच्चों को वर्षा देना, तो वो हमारे बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं को भी उसी से वर्षा मिलता है। अभी वो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको उनसे वर्षा लेना है। कहते हैं माम एकम याद करो, क्या कहते हैं? मुझे एक को याद करो, मुझे एक को याद करो। अगर बिंदी है, बिंदी रूप में ही है, तो मुझे एक को याद करो ये कहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि आत्माएं सब बिंदी है। मनुष्यों की आत्माएं भी बिंदी है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की आत्माएं भी बिंदी है, कौन सी बिंदी को याद करे? तो पाप कटेंगे, तो वर्षा मिलेगा, जरूर वो बिंदी कोई रूप नाम गुण कर्तव्य से प्रत्यक्ष होती है। ये पतित है ना, पतित तन में ही मैं आता हूँ, इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनका? चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता हो, इसलिए बोला इनका, इनका माने बहुवचन में, सूक्ष्म वचन में ब्रह्मा दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वचन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वो फरिश्ता होता है या पतित होता है? है सूक्ष्म वचन में पतित होता है, फरिश्ता होता है। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता, तो जो फरिश्ता है उसको पतित नहीं कहा जा सकता। पतित तने में भगवान बाप आते, फरिश्तों में नहीं आते। अगर फरिश्तों में आए होते तो भारत में फरिश्तों का गायन होता, फरिश्तों का गायन विदेशों में होता है, दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियन लोगों में मुसलमान लोगों में फरिश्तों का बहुत गायन है, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो खुदा का तख्त आठ फरिश्तों ने उठाया, बड़ी महिमा करते हैं। तो सूक्ष्म वचन में जो ब्रह्मा दिखाया हुआ है वो पतित नहीं है, उसमें आकर के वर्षा नहीं देते हैं, जरूर प्रजापिता की बात है। प्रजापिता तो जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता होगा, तो इस सृष्टि पर प्रजा के साथ अभी भी प्रजापिता मौजूद है, उस पति तन में परमात्मा शिव प्रवेश करके हम बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले सूक्ष्म में देते हैं, मन बुद्धि पवित्र बनाते हैं, माने हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। भले ये शरीर सड़ता जाएगा, लेकिन आत्मा पावरफुल होती जाएगी, और आत्मा इतनी पावरफुल बनेगी कि इस दुनिया के दुखों के बीच में रहते हुए भी दुखी अनुभव नहीं करेगी, शांत का अनुभव करेगी। तो सूक्ष्म वतन वासी में नहीं आते हैं, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं हो सकता। इतना क्लियर करके समझाते हैं, बाप समझाते हैं, ये व्यक्त है और पतित है। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये झाड़ में भी पिछाड़ी में खड़ा है, झाड़ के चित्र में नीचे भी बैठा हुआ दिखाया गया है और अंत में खड़ा हुआ दिखाया गया है। जो खड़ा हुआ दिखाया गया है झाड़ के चित्र में ऊपर, वो अंतिम स्टेज में है, तामसी स्टेज में। यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं, पवित्र फरिश्ता बनने के लिए तो सूक्ष्म वतन में भी दिखाना पड़े, और यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए। यहाँ माना कहा, मारे इस सृष्टि में वो ब्रह्मा तो अव्यक्त है और ये है व्यक्त। तुम भी फरिश्ता बनने आए हो, इन बातों में मनुष्य मुझे जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया ज्ञान है। तुम्हारे कोई शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, भगवान तो एक है ना, ऊंच से ऊंच भगवान है, वो ही निराकार है, सब आत्माओं का वो बाप है, उनके रहने का स्थान है परम धाम, जिसको सभी याद करते हैं कि आओ हम पतित बन गए हैं, माया का परछाया पड़ गया है। ये बातें नयों की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, सतयुग में हम बहुत थोड़े थे जो राज्य करते थे, कितने थोड़े थे, सतयुग में कितने थे और त्रेता में कितने हो जाते हैं। सतयुग में राज परिवार बहुत थोड़ा होता है और त्रेता के अंत में 16108 संख्या हो जाती है आत्माओं की, जो राज परिवार की भांति बन जाती है, वो भी राज परिवार की भांति है। 16108 राजा ही प्राप्त नहीं करते हैं। सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ अधर्म की तो कोई बात होती नहीं है। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप का राज्य था, त्रेता में रावण का राज्य था, वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में कोई सार नहीं है। जो सार की बातें हैं वो भी मैं बताता हूँ, उतरते ही आते हैं सीढ़ी, उतरते उतरते अब अंत में आए करके पतित बने ही। अब फिर तुम बच्चों को जंप मारनी है, हाई जंप लगावेंगे तो जैसे बायजोली खेलते हैं, पांव और चोटी एक साथ मिलाई देते हैं। उतरने में तुमको 84 जन्म लगे और जंप एक सेकंड में लगाए लेते हो। तुम अभी राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाए करके सुखधाम में आ जाएंगे। ये दुनिया तो है ही दुखधाम। पहले पहले तुम ही आते हो और बाप भी आकर के पहले तुमसे ही मिलते हैं। क्या यज्ञ के आदि में भी बाप जब आए थे तो तुम बच्चों से मिले थे? उस समय मिले थे ज्ञान का बीज रोपण करने के लिए, और अब तुम बच्चों से मिलते हैं सुख और शांति का वर्षा देने के लिए। पहले पहले ऐसी मानसिक स्टेज बनानी है, मन का ऐसा कॉन्सेंट्रेशन पैदा हो जाए, मन इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए कि बाप के सिवाय और कुछ याद ना आवे। तो जिसको याद करेंगे वैसी स्टेज बन जाएगी। तो बाप भी आकर के तुमसे मिलते हैं। बच्चे और बाप, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये हिसाब है। पहले पहले हम ही आते हैं, हमको 5-4 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए, अभी यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। पहले पहले स्वर्ग में पाठ बजाने तुम आते हो। अब तो सब आ गए, बाकी थोड़े बहुत जो रहे हुए होंगे वो भी आ जाएंगे, फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबको यहाँ आना है, वहाँ जब खाली हो जाएगा तो बाप सबको ले जाएंगे। कहाँ खाली हो जाएगा है? परम धाम। पहले परम धाम ले जाएंगे या पहले माउंट आबू ले जाएंगे है? आबू अब्बा का पहले घर कौन सा है जो प्रैक्टिकल में तैयार होता है, जिसके लिए बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सस्ती पर उतार लेंगे। परमधाम को इस सस्ती पर उतारेंगे तो पहले पहले परमधाम में कौन जावेंगे? पहले पहले दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जावेंगी या एडवांस नॉलेज लेने वाले जावेंगे? और एडवांस नॉलेज लेने वालों में भी पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जावेंगे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म के जो एडवांस हैं वो जावेंगे? पहले जरूर सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों की माला पहले तैयार होती है, वो है अष्टदेव की माला। बाद में चंद्रवंशियों की भी माला तैयार होती है, और वो सूर्यवंशी विजय माला में ऐड किए जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तो इन बातों को पढ़ना है, सुनना है। एक एक मुरली को कितनी बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए है? 5-6 बार, 21 बार नहीं। से मुरली बोला 5-6 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब बुद्धि में बैठेगा। अच्छा, ओम शांति।